श्रीमद्भागवतम 24वां अध्याय, 5वां स्कंध है और 27 श्लोक है। इस अध्याय का नाम है नीचे के स्वर्गीय लोगों का वर्णन। नीचे के स्वर्गीय लोगों का वर्णन, ये वर्णन चल रहा है इस अध्याय में। लगभग 30 श्लोक हैं, 31 श्लोक हैं, लगभग अध्याय की पुनरावृत्ति होने वाली है और बड़े अच्छे ढंग से इसकी व्याख्या किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सॉरी सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए। तो यहाँ पे 27वां श्लोक है, बाकी 28 और 29, 27 और 28 में तात्पर नहीं है, 29 में तात्पर है। एक्चुअली ये जो श्लोक है वो गद्य में है, तो इनको गाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी आप मेरे साथ साथ इस श्लोक की पुनरावृत्ति करेंगे। तस्यानुचरितम् उपृष्ट्यात् विस्तरिष्यते विस्तरिष्यते यस्य भगवान् स्वयं अखिल जगद्गुरुः नारायणो द्वारि गदा पाणिर् वतिष्ठते निज जनान कंपित हृदयो येनांगुष्ठेन पदा दशकंधरो योजनायुतायुतम् दिग्विजय उच्चाटितः। अनुवाद एवं तात्पर श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। तस्य बलि महाराज का अनुचरितम चरित वर्णन उपृष्ट्यात् बाद के परवर्ती यानी 8वें स्कंद में, ये बाद के जो परवर्ती अध्याय है वो 8वें स्कंद में। विस्तृष्यते, विस्तार से वर्णन करूंगा। यस्य जिसका भगवान श्री भगवान स्वयं, स्वयं मीन स्वयं अखिल जगद्गुरु तीनों लोकों के गुरु, नारायण साक्षात नारायण, द्वारी द्वार पर गदा पाणी हाथ में गदा लिए, गदा लिए हुए अवतिष्ठते, अवतिष्ठते खड़े रहते हैं निज निज अनुकंपित हृदय, जिनका हृदय अपने भक्तों के लिए सदैव दया से पूरित रहता है। येन जिसके द्वारा, अंगुष्ठेन बड़े अंगूठे से, पदा अपने पांव का, दस कंदर दस सिरों वाला रावण, योजन आयुत आयुतम 80,000 मील की दूरी, दिग्विजय बलि महाराज पर विजय प्राप्त करने हेतु, उच्चाटतः फेंक दिया। सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन भला मैं बलि महाराज के चरित्र का कैसे गुणगान कर सकता हूँ, तीनों लोकों के स्वामी श्री भगवान जो अपने भक्त पर अत्यंत दयालु हैं, महाराज बलि के द्वार पर गदा धारण किए खड़े रहते हैं। जब पराक्रमी असुर रावण बलि महाराज पर विजय पाने के लिए आया तो वामन देव ने उसे अपने पैर के अंगूठे से 80,000 मील दूर पर फेंक दिया। मैं बलि महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का विस्तृत वर्णन आगे 8वें स्कंद में करूंगा। ततो तलातले मयो नाम दानवेन्द्र त्रिपुर अधिपति भवता पुराणिया पुरारिणा त्रिलोकीसम त्रिकीसम चिकीर्षुणा निर्दग्ध स्वपुत्र त्रय तत्प्रसादा लब्ध पदो माया विना नामाचार्यो वा महावेदेन पुरी रखितो विगत सुदर्शन भयो महियते। ततो अधस्तात तलातले मयो नाम दानवेन्द्र त्रिपुर अधिपति भवता पुरारिणा त्रिलोकीसम चिकीर्षुणा निर्दग्ध स्वपुरत्रय तत्प्रसादात लब्ध पदो माया विनामाचार्यो महादेवेन पुरी रखितो विगत सुदर्शन भयो महीते। ये 28वां श्लोक है। सुतल लोक के नीचे तलातल नामक एक लोक है, इसका संधि विच्छेद भी कर लेते हैं। तत सुतल लोक के अधिस्थान नीचे तलातले तलातल नामक लोक में मय नाम का दानवेंद्र है, दानव राजा त्रिपुर अधिपति तीनों पुरियों का ईश्वर भगवता सर्वशक्तिमान द्वारा पुरारिणा शिवजी द्वारा जिन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है त्रिलोकी तीनों लोकों का सम सौभाग्य चिकीर सुना कामना करने वाला निर्दग्ध जला दिया स्वयपुर त्रय जिसकी तीनों पुरियां तत्प्रसादात शिवजी के अनुग्रह से लब्ध प्राप्त किया गया पद राज्य माया विनाम आचार्य समस्त मायावियों के स्वामी महादेवेन शिवजी के द्वारा परिरक्षित सुरक्षित विगत सुदर्शन भय जो श्री भगवान तथा उनके सुदर्शन चक्र से भयभीत नहीं है महियते आराधित हैं। सुतल लोक के नीचे पाताल नामक एक और लोक है जो मय दानव द्वारा शासित है। मय इंद्रजाल की शक्तियों से पूर्ण समस्त मायावियों के आचार्य स्वामी रूप में विख्यात हैं। एक मय दानव है जो मायावियों का आचार्य है और वो समस्त शक्तियां उसके पास हैं, इंद्रजाल की भी उसके पास शक्ति है और इसी के नाम से वो आचार के नाम से मायावियों के आचार के नाम से विख्यात है। एक बार भगवान शिव ने उन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है, तीनों लोगों के लाभ के लिए मय के तीनों राज्यों को जला दिया किंतु बाद में उससे प्रसन्न होकर उसका राज्य लौटा दिया। तब से शिवजी मय दानव की रक्षा करते हैं, इसलिए वह गलती से सोचता है कि उसे भगवान के सुदर्शन चक्र का भय नहीं करना चाहिए। ये उसकी अपनी एक ईगो है, एक अवमान है कि भगवान शिव के द्वारा मेरी रक्षा होती है। भगवान शिव ने उसको पराजित करके तीनों लोगों को सुरक्षित किया और आज भी भगवान शिव उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ तलातल लोक में रहते हैं और वो अब ये मान बैठा है कि अब मुझे मारने वाला अर्थात काल भी मेरे लिए कोई बाधक नहीं है, लेकिन ये उसका भ्रम है। सुदर्शन चक्र से भी, भगवान के सुदर्शन चक्र से भी उसे कोई भय नहीं है। पूरी रखितो विगत सुदर्शन भयो महियते, अब वो ये मान बैठा है कि सुदर्शन चक्र से मुझे कोई भय नहीं है। और ततो धस्तात्महातले काद्रवेयाणाम सर्पाणाम नैक शिरसाम क्रोध वसो नामगढ़ कोक तक्यक कालिये सुसेनादि प्रधान महाभोगवंत पतित्रय राजपद राजाधिपतये पुरुष वहाद नवरतम उद्यजमा उद्यज माना स्वकल त्रापत्य सुहृत सुकुटुंब संगेन स्वचित प्रमत्ता विहरंती। तत्तो धस्तात् महातले, ततः माने पात, ततः मेरे साथ बोलिए, ततः तलातल लोक से, अधस्तात नीचे, महातले महातल है, महातल नामक लोक है, काद्रवेयाणाम कद्रु की संतानों का, सर्पाणाम जो सर्प हैं, न एक शिरसाम जो अनेक फनों वाले हैं, न एक, एक ही नहीं है, न एक शिरसाम, न एकम शिरसाम, न एक शिरसा, यानी एक ही फल नहीं है, उनके अनेक फन हैं। क्रोध बस सदैव क्रोध के बसीभूत, नाम नाम गण गण समूह, कोहक ये उनके नाम गिना रहे हैं, कोहक तक्षक कालिय सुसेण आदि, प्रधाना प्रमुख महाभोगवंत समस्त प्रकार के भोगों में लिप्त, पतत्र राज अधिपते समस्त पक्षियों के अधिपति, गरुड़ से पुरुष वाहत श्री भगवान को ले जाने वाला, अनवरतम निरंतर, उद्यजमाना भयभीत स्वयं अपने आप, कलत्रय पत्य स्त्रियों तथा संतानों, सुहृद मित्र कुटुंब कुटुंबी जन, संगेन साथ में, क्वचित कभी कभी, प्रमत्ता क्रुद्ध विहरंती विहार करते हैं, खेलते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। तलातल के नीचे का लोक महातल कहलाता है। यह सदैव क्रुद्ध रहने वाले अनेक फनों वाले कद्रु की सर्प संतानों का आवास है। इन सर्पों में कोहक तक्षक कालिय सुसेण प्रमुख हैं। महातल के सारे सर्प भगवान विष्णु के वाहन गरुण के भय से सदैव आतंकित रहते हैं, किंतु चिंतातुर होते हुए भी उनमें से कुछ अपनी पत्नियों संतानों मित्रों तथा कुटुंबियों के साथ साथ क्रीड़ा करते रहते हैं। तात्पर्य यहां बताया गया है कि महातल लोक के सर्प अत्यंत शक्तिशाली तथा अनेक फनों वाले होते हैं। वे अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ रहते हुए अपने को परम सुखी मानते हैं। यद्यपि उन्हें गरुड़ का भय बना रहता है जो उनको नष्ट करने के लिए वहां आता है, यही भौतिक जीवन का विधान है। कितना आश्चर्य है इस भौतिक जीवन में, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भले ही कोई कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना रहे तो भी वह अपनी पुत्री पत्नी मित्र पुत्र कुटुंबजनों के मध्य अपने को सुखी मानता है। भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य समाप्त हुआ। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्रोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्री युध पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सेगड़ रघुनाथान्वितम तम सजीवम सावदेतम साविदूतम परजन सहतम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सेगड़ ललता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपी से गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रिसवान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुस्वे नमः। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नयाष्टिकी। हरे कृष्णा। तो ये जो अध्याय है इसमें नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन 24वां अध्याय है 5वें स्कंद का। नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन अर्थात ऊपर भी स्वर्गीय लोक हैं। प्रतिध्वनि नीचे है तो ऊपर भी, हम इस किनारे खड़े हैं इसका मतलब दूसरा किनारा भी है। एक किनारे पर अगर हम खड़े हैं तो दूसरा किनारा चाहे वो हमको दिख नहीं रहा है लेकिन है, तो इसका मतलब हुआ दो प्रकार के स्वर्ग हैं, एक उच्च लोक हैं एक निम्न लोक हैं। तो आज जो वर्णन किया है वो तो निम्न लोकों में जो स्वर्गों का वर्णन है किस प्रकार से किया है। वैसे तो अच्छे अच्छे आचार्य लोग इसी अध्याय को, चौका 27वां दिन है इसी अध्याय में, फिर भी प्रभुपाद जी ने सौभाग्य दिया अपनी वाणी धन्य करने के लिए और सभी भक्त इस पावन गंगा में जो भागवत संहिता है बह करके हम तक आ रही है, इसमें गोता लगा के अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। आज इस दास को भी सेवा मिला है। मैं थोड़ा सा पहले इस अध्याय पे चर्चा करेंगे हम लोग। सूर्य लोक और सूर्य से नीचे हैं 10,000 योजन के नीचे एक राहु ग्रह है, और राहु ग्रह 10,000 योजन नीचे रहता है, सूर्य चंद्रमा दोनों उसके ऊपर हैं। कथा सबको मालूम है कि राहु सूर्य चंद्रमा दोनों से द्वेष करता है, इसलिए वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उनको ढकने की कोशिश करता है, और कभी कभी मौका लगता है तो ढक भी लेता है, जिसको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। राहु से 1,00,000 योजन नीचे, 10,000 योजन नीचे राहु ग्रह है सूर्य से, और 1,00,000 योजन नीचे सिद्धों चारणों और विद्याधरों के लोक हैं, 1,00,000 योजन नीचे, और उनसे भी नीचे यक्ष लोक हैं, राक्षस लोक हैं। सूर्य का यहां थोड़ा सा, क्योंकि हमारा शास्त्र जो कह रहा है, हम लोग वैष्णव लोग उसको मानते हैं, भूगोल कुछ अलग बताता है, तो सूर्य का जो विस्तार है वो 10,000 योजन का है, चंद्रमा का जो विस्तार है 20,000 योजन का है, और जो राहु ग्रह है इसका जो विस्तार है वो 30,000 योजन का है। और इनसे सिद्ध चारण और विद्याधर लोकों से नीचे 100 योजन नीचे ये पृथ्वी लोक है। पृथ्वी की जो सीमा है, जहां तक गिद्ध बाज हंस उड़ सकते हैं, वो उसकी सीमा का माप का मापदंड है। उससे ऊपर पृथ्वी का या पृथ्वी की सीमा नहीं है। पृथ्वी की सीमा में ही पक्षी उड़ सकते हैं, और ये जो लोक हैं, सिद्ध लोक, चारण लोक और विद्याधर लोक, ये अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, जहां वायु है, अंतरिक्ष से ऊपर वायु नहीं है, ऐसा वर्णन भागवत जी में आता है। और ये जितने भी पक्षी हैं वो गुरुत्वाकर्षण जहां तक है पृथ्वी का, वहां तक उड़ते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। पृथ्वी के 70,000 योजन नीचे निम्नतर लोक हैं, जिनको तल, अतल, वितल, सुतल और तलातल, महातल, रसातल और फिर लास्ट में पाताल लोक, ये 7 लोकों का वर्णन आता है। और इन 7 लोकों में असुर अपनी पत्नियों के साथ भोग विलास करते हैं, सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। हम लोग जिस सुख की आशा करते हैं वो तुच्छ है, एक अंश मात्र सुख है, उससे कई हजार गुना सुख स्वर्ग लोक के देवता लोग उसका आनंद लेते हैं। कई लाख वर्ष तक वो भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भागवत जी पढ़ सकते हैं। क्यों? कि 72 चतुर्युग वर्ष की आयु है उनकी, एक मनवंतर तक देवताओं की जो आयु है, और उनका जो सुख है, उनका जो आनंद है, वो आनंद भी ये निम्नतर जो लोक हैं, निम्नतर जो स्वर्गीय लोक हैं, उनके सामने तुच्छ है। बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि यहां मरने की परवाह नहीं है, यहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं है, यहां पर दिन रात नहीं होते, यहां काल बाधित नहीं है। एक बार को स्वर्ग में काल बाधित है, समय आने पे 73 चतुर्युग जब निकल जाएंगे तो इंद्र अपना इंद्रासन छोड़ देगा। इसी प्रकार के 14 इंद्र 12 घंटे ब्रह्मा के होते हैं, इसी प्रकार से 24 घंटा एक दिन, फिर एक महीना, फिर 365 दिन एक साल, ऐसे 100 साल की उम्र ब्रह्मा जी की है। वह भी काल बाधक है, लेकिन यहां काल बाधक नहीं है। क्यों? कि यहां दिन निकलता ही नहीं है, दिन रात का कोई मापदंड वहां नहीं है। जब दिन रात नहीं होगा तो वो इतने लिप्त हैं भोग विलास में, इतने लिप्त हैं मैं दानव के द्वारा, ये सब जो कृत्रिम स्वर्ग कहते हैं इसको, एक नेचुरल है, ये कृत्रिम स्वर्ग है, इंग्लिश में क्या आर्टिफिशियल, ये बनाया हुआ है। और मैं दानव के द्वारा, ये सबसे बड़े इंटीरियर डिजाइनर थे और सभी असुरों के, ये क्या बोलते हैं, जितने भी मायावी असुर हैं उनके आचार्य माने जाते हैं, ये सबसे बड़े दक्ष हैं, शिल्पीकार हैं मैं दानव, इसके द्वारा ये रचा गया है। और वहां मृत्यु का कोई भय नहीं है किसी प्रकार का। वहां उन्होंने इतने सुंदर भवन बनाए, इतने सुंदर आश्रम बनाए, आश्रम ये भजन करने के लिए नहीं, भोग विलास के लिए, विदेशियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर, ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसमें भागवत में वर्णन है, विदेशियों के लिए इतने सुंदर होटल बनाए, हर सुख सुविधा से उपलब्ध थे, इतनी सुंदर बागान, इतने सुंदर फल लगाए, इतनी सुंदर फेंसिंग किया, कल्पना से बाहर, उसमें केवल इंद्रिय भोग भोगने के लिए वहां ये सब रहते हैं अपनी पत्नियों के साथ। प्रकाश कैसे होता है? वहां जो सांप रहते हैं उनकी जो मणि है उनके द्वारा वहां प्रकाश, वो प्रकाशित होता है, वो पूरा स्थान प्रकाशित होता है उनके द्वारा। और उनका काल कैसे आता है? वो मरते कैसे हैं? क्योंकि काल तो किसी को नहीं छोड़ता, अमर तो कोई है ही नहीं। तो सुदर्शन चक्र जाकर के जो कृत्रिम स्वर्ग बनाया है मैं दानव ने, उनमें जाकर के उनका वध करता है। जब जब सुदर्शन चक्र जाता है तो उस समय उनकी जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो गर्भपात कर देती हैं भय से, और उनका नाश हो जाता है। मैं दानव ने इतनी सुंदर रचना वहां किया है, सुंदर भवन उद्यान, स्वर्ग लोक के सुख से कहीं ज्यादा उनका सुख, जो मानदंड जो माना जाए तो बहुत ज्यादा आगे है। इतना स्वच्छ झरना है, इतना स्वच्छ जल है, ट्रांसपेरेंट, एकदम नीचे तक आप देख सकते हैं, इतनी सुंदर मछलियां हैं उसके अंदर। अगर वास्तव में सफाई अभियान को देखा जाए तो मैं दानव से सीखना चाहिए, क्लीन भारत, और बोलते हैं ना हरित प्रदेश, तो हरित प्रदेश तो वो है। यहाँ गंगा जमुना बड़े दुर्भाग्य की बात है, और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि गंगा जमुना के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो सज्जन हैं, जो रहने वाले हैं, वो कचरा लेके जाएंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे मैया, और बा देते हैं कचरा को। यहाँ गंगा जमुना ट्रांसपेरेंट नहीं है, भगवान ना करे अगर कोई जमुना जी में डूब जाए और वो मर जाए तो उसकी डेड बॉडी को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, इतना ट्रांसपेरेंट वाटर है। लेकिन वहां एकदम ट्रांसपेरेंट जल है, इतने सुंदर पक्षी हैं, समय पे गा रहे हैं, समय पे राग गाते हैं, कूकते हैं, लुभाते हैं, और उनको सुनकर के वो इंद्रिय भोगों में और ज्यादा आनंद लेते हैं, इस प्रकार का वहां का वर्णन है। तो उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता कि समय कब निकल गया, ये मैं दानव की रचना है। और प्रहलाद महाराज कहते हैं, माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ा, हे विमूढ़, हे मूर्ख, ये जो सुख है जिस सुख को तू प्राप्त कर रहा है ये तो क्षणिक है, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे वो कृत्रिम स्वर्ग में हो, चाहे वो मृतलोक में हो, ये सुख तो क्षणिक है, कुछ भी नहीं है। जो सुख भगवान के पास है, जो सुख भगवान की भक्ति में है, प्रहलाद महाराज कथा बताते हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये सुख भी कोई है, हम इसी को सुख मान बैठते हैं। एक कुएं के मेढक बन के रह गए, कुआ का मेढक समझता है पूरा दुनिया यही है, हमको सुख क्या मिला, एसी लगा लिया, कितनी ठंड मिल गया तो बस खुश हो गए, आहा क्या बात है, यही सुख है। एक कमरे में एक एसी लगा दिया, 10 लोग आ सकते, मैंने इतना बड़ा हॉल बनाया है, ये है, आप देखो कितना बड़ा एसी चल रहा है, और कोई विंडो नहीं लगाना पड़ता कहीं भी कि विंडो लगाओ हवा ना निकल जाए, गर्मी ना आ जाए बाहर से, पूरा दुनिया में एसी लगा हुआ है। कल्पना करो कितना बड़ा सुख दिया है। और जब हीटर चलता है उसका तो जबरदस्त चलता है, फिर भी गेट नहीं खोलना पड़ता, गेट बंद रखो ठंडी हवा आ जाएगी बाहर से, पूरे जगत को गर्मी दे देता है। कितना खजाना है उसके पास सुख का, और उसको हम बिल्कुल भूल बैठे हैं, दिमाग से उतार दिया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या था, मैं क्यों आया इस जगत में। ये सुख क्षण मात्र के लिए है। और भूत प्रेत पिशाच उसके नीचे उनका लोक है, जो दक्ष हैं, जो पिशाच हैं, उनके नीचे भूत प्रेत आदि का है। हम लोग छोटी छोटी घटना होती है जीवन में ऐसा सोच बैठते हैं, अरे यहाँ भूत होगा, यहाँ प्रेत होगा, उनके लोग बहुत ऊपर हैं, और हम लोग भयभीत रहते हैं, मन में एक शक बैठ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति गया, फ्लैट खरीद लिया उसने, तो उसे जब रजिस्ट्री हो गई तो पूछा, भाई लोगों ने बताया यहाँ भूत रहते हैं चारों तरफ, आपने कहाँ फ्लैट ले लिया, सच में? बोला हाँ। तो पड़ोस में गया, कुंदी खटखटाए, वहाँ एक सज्जन बैठे मिले, बोले साहब मैंने यहाँ फ्लैट ले लिया आपके पड़ोस में। कहाँ लिया? बोले बराबर में लिया है। अच्छा, मैंने सुना यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। बोले भाई मुझे नहीं मालूम, माफी चाहता हूँ, मैं तो 20 साल पहले मर गया था, अब यहाँ क्या रहता है मुझे मालूम नहीं। तो ये भ्रम बैठ जाता है हमारे मन में कि हम इंद्रिय भोग को सुख मान बैठते हैं कि ये ही सुख है जीवन का, और कोई सुख नहीं है। लोकों का वर्णन किया, लोकों में अतल पहला लोक है, इस अतल में जो मैं दानव है उसका बेटा है बल, उसके द्वारा ये रक्षित है, ये 96 प्रकार की माया जानता है और 96 प्रकार की माया में लोगों को लिप्त रखता है, और ये जब उबासी लेता है तो 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न होती हैं, पहली सुवर्णी और दूसरी कामनी, तीसरी पुंशला। सुवर्णी स्त्री जो अपने ही वर्ग से के पुरुष से शादी करती है, कामनी स्त्री जो दूसरे वर्ग के पुरुष से भी शादी करती है, पुंशला वो पति चेंज करती रहती है। इस प्रकार के 3 पत्नियों का वर्णन किया है, और प्राय करके देखा गया है 3 पत्नियां इस जगत में भी हैं। और जब कोई जीव अतल लोक में जाता है अपने कर्मों के अनुसार, तो ये स्त्रियां क्या करती हैं, उसे इमीडिएटली पकड़ती हैं, और पकड़ के उसको हाटक नामक जो जड़ी है उसके द्वारा मादक जो बनता है उसको पिला देती हैं, जिससे वो कामासक्त हो जाता है और भूल जाता है एकदम सब कुछ, केवल काम वासनाएं उसके ऊपर सवार रहती हैं, और उसके साथ फिर वो संभोग आदि क्रिया करती हैं। वितल लोक में भगवान शिव मां पार्वती के साथ वितरण करते हैं, और क्योंकि वो माँ हैं, पिता हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने जैसा लिखा है और जैसा भागवत वर्णन है, उनके वीर से नदी बहती है और वायु के प्रभाव से उसमें आग लग जाती है और अग्निदेव उसको थूक देते हैं, उससे स्वर्ण बनता है हाटक नामक, उससे आभूषण आदि वो पहन करके अपने आप को हमेशा कामासक्त रखती हैं। सुतल लोक में, अब जो कथा आई है, सुतल लोक में विरोचन के पुत्र बलि महाराज रहते हैं और स्वयं भगवान उनके सामने उनके दरवाजे पे गदा लेके खड़े रहते हैं रक्षा करने के लिए। एक बार रावण गया था, दिग्विजय रावण, तो दिग्विजय रावण को उन्होंने अंगूठा से अग्रभाग से ठोकर मार के 80 मील दूर फेंक दिया भगवान ने। और बलि महाराज, वास्तव में अगर भक्ति सीखना है, भक्ति करना है, तो बलि महाराज के उपदेशों का आचरण करो। बलि महाराज के पास भगवान स्वयं गए और स्वयं जाके त्रिलोकीनाथ हैं भगवान, त्रिलोकीनाथ जाके खड़े हो गए। भगवान पे कोई कमी है? भिक्षुक बन के खड़े हैं फिर भी उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। भगवान बलि के सामने खड़े होके भ्रमित हो गए कि मैं कैसे तीनों लोकों को मांगू, मैं इससे क्या मांगू कि तीनों लोक इंद्र को मिल जाएं। एक क्षण के लिए भगवान भी सोच में पड़ गए। यह है भक्ति। और फिर सोचा और सोच के भिक्षुक बन गए और तीन पग भूमि मांगा। भगवान से कोई लेकिन भक्त के सामने हार जाते हैं भगवान। तीन पग भूमि जाने बलि लियो चल, और उसी पे चौकट ना लांगी जाए रहसो मचल। भगवान कैसी कैसी लीला करते हैं। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उलटी बहेदार। वास्तव में अगर कृष्ण से नाता जोड़ना है तो प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम एक ऐसी डोर है जिसके द्वारा भगवान से नाता जोड़ा जा सकता है, और कोई साधन नहीं है भगवान से नाता जोड़ने के लिए। प्रेम के बस होता है वो, और नहीं तो भगवान है विश्व का भरण, विष्णु विश्व का भरण पोषण करने वाला है। वो ताय अहिर की चोरिया छचिया वर छाछ पे नाथ नचाए। प्रेम नहीं है तो क्या है? आज वजन नहीं उठ रहा है, वो कह रहे हैं बेटा मेरे खड़ाऊ लेके आ, और रो रहे हैं और खड़ाऊ को सिर पे ला रहे हैं और पसीना आ रहा है पूरे मस्तक पे, बिंदु झलक रहे हैं पसीना के। नंद महाराज के कहने से वो ला तो रहे खड़ाऊ को सिर पे रख के, लेकिन पसीना आ रहा है, जबकि उन्होंने कन्न की उंगली पे उठा लिया था गिरवर को। भो मरोड़ पलट दूं सृष्टि, प्रीत ना पलटी जाए, झीनी झीनी प्रेम की डोरी, वो पे तोरी ना छोड़ी जाए। ये प्रेम की डोरी इतनी मजबूत है कि भगवान पे ना तोड़ी जाए और ना इसको छोड़ सकते। ये ऐसे भक्त उसको पकड़ा देता है कि ये पकड़, अब ना तो वो छोड़ सके और ना उसे तोड़ सकता। लेकिन आज प्रेम में बलि महाराज इनके सामने खड़े, सोच रहे हैं मैं क्या मांगू जिससे जो मुझे इंद्र ने कहा मैं उसको वापस दे सकूं। भगवान सोच रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। भक्त के सामने, भक्त के सामने आश्चर्य नहीं है, बहुत उदाहरण है। भगवान भक्त के सामने नतमस्तक होता है, क्यों? कि भक्त का प्रेम उसको चाहिए, उसका भाव का भूखा है वो, और उसके पास अपार मात्रा में भाव है। भक्त के पास ले कितना लेना। तो बलि महाराज तीन पग भूमि मांग रहे हैं बलि महाराज से, और तीनों पग भूमि उन्होंने दे दिया। देने के बाद भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए, केवल शरीर मात्र बचा बलि महाराज का, और शरीर मात्र बचने के बाद भी भगवान को संतुष्टि नहीं हुई। अब वरुण पास में बांध के उसको और बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में फेंक दिया। कितना आश्चर्य है, फिर भी बलि महाराज इतने खुश हैं, एज कुड भी जितने भी हो सके इतने खुश हैं बलि महाराज, बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा होता है, कई बार वो मचलता है तो माँ उसमें मारती है चांटा, भाग यहां से, और घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा फिर दौड़ दौड़ के आता है और धोती पकड़ लेगा, वो छुड़ाएगी फिर भी धोती पकड़ लेगा, क्यों, पिटता जा रहा है फिर भी पकड़ रहा है। यही प्रेम है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बलि महाराज कितनी बड़ाई कर रहे हैं, कितनी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, अपने भाग की सराहना कर रहे हैं कि मैं धन्य हूं। जैसे वो बच्चा अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, क्यों, तो वो बच्चा माँ से प्रेम करता है या माँ उसको प्रेम करती है, वो एक ताड़ना दे रही है सिर्फ, उसकी गलती के लिए उसको भगा रही है, लेकिन प्रेम तो हृदय में है। वो जानते हैं भगवान के प्रेम को बलि महाराज, कि इनके हृदय में प्रेम है, इसलिए मुझे वरुण पास में बांध करके इन्होंने यहां फेंका है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कहते हैं मैं धन्य हूं, और एक इंद्र को भी देखो, तुलना करके देख रहे हैं, इंद्र के सामने भगवान प्रकट हुए थे, मेरे सामने भी हुए, इंद्र के सामने जब प्रकट हुए तो इंद्र ने क्या मांगा, ऐश्वर्य मांगा तीनों लोगों का, और इंद्र जिन्होंने अपना सबसे बड़ा सचिव जो बृहस्पति देव को बना रखा है आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, लेकिन आज पता नहीं वो कैसे किस प्रकार की उनको शिक्षा दे पाए, जो आज सामने भगवान प्रकट हैं फिर भी उन्होंने एक क्षणिक सुख मांगा, जो कि तुच्छ सुख है। इस सुख का जो मापदंड है कितना है, केवल 72 चतुर्योग, इससे ज्यादा नहीं है। इतना क्षणिक सुख मांगा है इंद्र ने, धिक्कार है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे। लेकिन और इतना ही नहीं है, इस क्षणिक सुख के लिए भी कितना उन्होंने कार्य किया है यह भी मुझे कहना नहीं बनता है। त्रिलोकीनाथ को मेरे दरवाजे पर भिक्षा के लिए भेज दिया, लेकिन धन्य है त्रिलोकीनाथ, आप इंद्र से प्रेम करते हैं, उसका प्रेम इतना हैवी हो गया है कि उसके कारण आप भिक्षुक बन गए मेरे यहां के। लेकिन धिक्कार इंद्र के लिए है कि सामने त्रिलोकीनाथ खड़ा है, और त्रिलोकीनाथ सामने खड़े होकर के वो क्या मांग रहे हैं उनसे, क्षणिक सुख, जो कि बिल्कुल अंश मात्र है सुख का। 72 चतुर्युग राज को अंश मात्र सुख बता रहे हैं। कल भी बहुत सुंदर दृष्टांत दिया था प्रभु जी ने, जैसे कि एक राष्ट्रपति किसी जेल में गया और जेल में जाके उसने ये निश्चय किया कि जो कोई मांगेगा मैं वही दे दूंगा, ऐसा एक नियम है। तो राष्ट्रपति जब वहां गए तो उन्होंने सबसे पूछा कि, और पेन कॉपी लेके उनका सचिव भी साथ साथ चल रहा था, हाँ जी आप, बोले जी आजीवन सजा में हूं। अच्छा आपको कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं जी कोई परेशानी नहीं, पर यह क्या है कि लाट बड़ी परेशान करती है साहब, गर्मी में ना पंखा चलता है ना कुछ, इनका पंखा ठीक करा दिया जाए। ओके सर, आगे गए, हाँ जी आप, बोले दहेज प्रथा में फंसा पड़ा हूँ जी। अच्छा तो कोई समस्या तो नहीं आपको? समस्या तो कुछ नहीं है जी, पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा ज्ञान भी है, पर यहाँ पेपर नहीं आता जी, मुझे पेपर पढ़ने का बहुत शौक था, सुबह सुबह पेपर पढ़ता था, अब तो जी मुझे साल होने वाला है और पता नहीं कब तक यहाँ पेपर की कोई सुविधा नहीं है, याद करो इनको पेपर दे दिया जाए। नोट किया, यस सर पेपर कल से आपको आएगा, जब तक आप रहेंगे पेपर आपको मिलेगा। आगे गए, हाँ जी आपको क्या चाहिए? क्या बताऊं जी, सुबह सुबह चाय पीने की आदत थी, अब तो यहाँ चाय छूट गई, चाय के साथ अगर वो रस मिल जाए दो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी इनके लिए चाय दिया जाए। लेकिन जब लास्ट में पहुंचे तो एक सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने पहले से एक पत्र लिखा हुआ था, हाँ जी आप, बोले जी आजीवन सजा में हूं और सबूत भी मिल गए, हो सकता है फांसी भी हो जाए, ऐसा कई बार मुझे संकेत मिला है कि शायद फांसी हो जाए आपके, आपको क्या चाहिए? आपको कोई परेशानी तो नहीं है? सब सुख सुविधा है ना आपको? हाँ जी सब सुख सुविधा है, पर मैंने सुना है तो पढ़ा लिखा भी हूं, संविधान का भी मुझे ज्ञान है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो फांसी की सजा भी माफ हो सकती है। सर मैंने ये पत्र बना रखा है, आप चाहें तो मैं इस सजा को माफ करके मुझे यहां से मुक्त करा दें। लाइए, तुरंत साइन किया, आगे बढ़ गए। तो विद्वता तो वही है कि उसने तुरंत साइन करके पेपर नहीं मांगा। हम लोग पेपर मांग रहे हैं कि अमर उजाला चाहिए हमको, हमको मैगजीन चाहिए, हमको रसभरी चाहिए, हमको चाय चाहिए, ये मांग रहे हैं। जो कि खेड़क है, ये तो नाम प्रभाव से मिल जाता है। केवल भगवान का एक नाम भी जप कर लेना, नाम अपराध को मिलाकर के भी जप कर लें, दस नाम अपराध भी करते जाएं और जप करते जाएं, तो आपको ये सब मिल जाएगा। शुद्ध भक्ति और शुद्ध भगवान का नाम जप करना तो बहुत दूर की बात है। जैसे घर में कोई शेर पाल ले और शेर घर में बैठा हुआ है और कोई गीदड़ आ जाए अंदर, तो वो बोलेंगे अरे भाई सुनो शेरू खड़े हो, देखो गीदड़ आ गया। नहीं कहना पड़ेगा उसको, पहले तो गीदड़ आएगा ही नहीं, और जैसे ही उसको पता लग गया कि यहां, तुरंत भाग जाएगा। तो नाम तो भगवान का कैसे भी लो, भाव कुभाव न कालसु, नाम जपत मंगल दस दसो। भगवान के नाम मात्र से ही, नाम आभास से ही वो दूर हो जाता है। मुक्ति और भुक्ति तो खेड़क है, अरे उनके जो कर्म है ना, अपने कर्म, वो कर्म भी विनाश हो जाता है नाम लेने मात्र से, चाहे उसमें कुछ भी मिला हो, नाम अपराध भी क्यों ना हो, ऐसा वर्णन किया है भागवत ने। हरदास ठाकुर कहते हैं केवले नाम है ते है पाप क्षय, केवले नाम है ते जीवेरे मोक्ष हय। कोई कहते हैं, कई लोग बोलते हैं कि नाम लेने से पाप क्षय हो जाते हैं, पापों का नाश हो जाता है, और कई बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं नाम है ते जीवेरे जीवेर मोक्ष हय, जीव को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। लेकिन हरदास ठाकुर कहते हैं नहीं, हरदास कहेन नामेर ए दुई फल नए, ये नाम का जो फल है ये केवल दो ही फल नहीं है। जो आप सोच रहे हैं कि हमको पाप क्षय हो जाएंगे हमारे और हमको मोक्ष मिल जाएगा, ये ही नाम का फल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। हरिदास कहेन नामेर ए दुई फल नए, ये दो फल नहीं है। क्या है? नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजाए, नाम लेने से तो कृष्ण के चरणों में प्रेम जागृत होता है। कितनी सुंदर बात है कि नाम लेने से मात्र, जैसे भागवत जी कल्प तरु है, कल्प वृक्ष है, जो मांगेंगे मिलेगा, आम का पेड़ है, आप मांगो तो, अगर आप एप्पल मांगेंगे एप्पल दे देगा, बनाना मांगेंगे बनाना दे देगा, लेकिन उसका अपना फल क्या है? आम है। मान लीजिए केला कल्प वृक्ष है, आप उससे मांगे सेब, वो सेब दे देगा, अपना फल तो केला है उसका। कोई ना मांगे, कुछ भी ना मांगे, तब भी वो अपना फल तो देगा ही, कि उसके नीचे आप बैठे हैं। ऐसे ही भागवत जी कल्प तरु है, इसका अपना फल क्या है? कोई मांगेगा वो तो देगा ही देगा, आप पुत्री पुत्र संतान नहीं है तो मांगो दे देगा, सेवा मांगो दे देगा, कोई भी चीज की जो आप इच्छा करेंगे वो ही दे देगा, क्योंकि डिजायट्री है। लेकिन अगर कोई कुछ ना मांगे, भक्त केवल जप कर रहा है, मंगला आ रहा है, जप कर रहा है, सोलह नेम सोलह माला जप कर रहा है, चार नेम पालन कर रहा है, एकादशी व्रत रख रहा है, मांग कुछ भी नहीं है, तो क्या देगा? मान ली भागवत, आप डेली नित्यम भागवत सेवा, रोजाना पाठ कर रहे हैं, भागवत जी का पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भागवत जी क्या फल देगी? क्या फल है इसका? कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम किसने दिया? नमो महाबदन्नाय। कृष्ण प्रेम इस जगत में अगर दिया है किसी ने तो वो महादानी कहलाता है। दानी नहीं है, दानी तो बहुत है, कितने लोग दानी हुए जिन्होंने पृथ्वी दान कर दिया, जिन्होंने वो सब दिया, जैसे बलि महाराज ने दान कर दिया, दानी है। कितने लोग हुए जिन्होंने क्या क्या दान कर दिया, मकान दान करते हैं, वो मंदिर डोनेशन दे देते हैं, मंदिर में कितना करोड़ रुपए दान दे देते, दानी है, लेकिन महादानी, महादानी कौन? महावदन्नाय, कृष्ण प्रेम प्रदायते। महादानी कौन है? चेतन महाप्रभु, जिन्होंने कृष्ण दान, कृष्ण प्रेम प्रदान किया था। कृष्ण का प्रेम कैसे प्राप्त होता है वो बहुत सरल तरीका बता दिया, एकदम सरल तरीका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुछ नहीं करना, चैंट एंड बी हैप्पी। हैप्पी कैसे हो जाएंगे भाई? प्रसन्न कब होंगे? चैंट करेंगे। किस चीज से प्रसन्न हो जाएंगे? भक्तों को तो कोई दुख है ही नहीं, भक्त हमेशा प्रसन्न है, जब कर रहा है पूरा। हैप्पी कैसे हो जाएंगे? कौन सी चीज ऐसी है जो भक्त को भी सता रही है? भक्त भी प्रसन्न होना चाहता है, वो तो हैप्पी नहीं है। हैप्पी लोगों को तो प्रभुपाद जी ने हैप्पी बनाया, अपने भोगों में लिप्त थे, प्रभुपाद जी ने उनको फिर कृपा किया कि बेटा हैप्पी हटो, आई को हटाओ वाई लगाओ, हैप्पी बनो। आई वाई दो ही तो अंतर रह गया उसमें, और वो आई वो प्रसन्न है। लेकिन भक्त जो जप कर रहे हैं उनके लिए भी तो ये सूत्र लागू है, चेंट एंड भी हैप्पी। क्या वो हैप्पी नहीं है? हैप्पी है तो फिर तो उन लोगों के लिए कहना चाहिए तो जो हैप्पी नहीं है, लेकिन सबके लिए है ये, अंडरलाइन है। ऐसा नहीं है कि केवल भक्तों के लिए नहीं है, और कर्मी लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए है, भक्तों के लिए भी है। तो भक्त तो सोलह माला जप कर रहा है, मंगला आरती अटेंड कर रहा है, पूरा प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, वो उसके लिए हैप्पी क्यों आया? उसको क्या दुख है? अधिक से अधिक जप कर रहा है, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप कर रहा है, और हमेशा भगवान में नित्यम भागवत सेवया या कथंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति चरम अन्ति च तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम्। प्रीतिपूर्वक भगवान का नाम जप कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, ऑलवेज एंगेज टू सर्विस ऑफ कृष्ण। फिर कौन सा सुख देना चाहते हैं? फिर कौन सी हैप्पी उसको देना चाहते हैं? प्रभुपाद जी एक संस्कृत में स्त्री का जो जो अर्थ है वो है भय, स्त्री को भय भी कहते हैं। जब मीरा जी यहां आई, उन्होंने पूछा जीव गोस्वामी से कि मैं मिलना चाहती हूं, तो बता दिया कि वो अभी जप कर रहे हैं या व्यस्त हैं, अभी नहीं मिलना चाहते। या ऐसा भी है कहते हैं कि वो स्त्रियों से नहीं मिलते। बोले हमने तो सुना एक ही पुरुष है यहां, और कोई स्त्री है ही नहीं, लेकिन यहां दो पुरुष हैं। और ये बात जैसे ही सुना तुरंत उनका बुलाइए उनको। ये उच्च कोटि की भक्ति है मीरा जी की। तो भय क्या है? भय का एक नाम है स्त्री, स्त्री एक भय है। कोई भी पुरुष नहीं है, सब स्त्री है यहां, सब भयभीत है। अरे मृत्यु का दंड, मृत्यु का भय तो सबको ही है। जब कृत्रिम स्वर्ग में देख रहे हैं वहां काल बाधित नहीं है, काल बाधित है वहां, सूर्य निकलता ही नहीं है वहां, दिन रात है ही नहीं वहां, लेकिन सुदर्शन जाता है ना, वहां भय है कि नहीं है? है भय। तो जिसे भय ही नहीं है, ध्रुव जी महाराज के सिर पे काल देवता खड़े रहे थे वहां के, महाराज बताओ मैंने क्या करना है, मुझे आज्ञा तो दो, मैं क्या करूं? विधि का विधान है, सभी को मुझसे गुजरना पड़ता है, लेकिन ध्रुव महाराज को कोई भय नहीं है। और मृत्युदेव के पैर रख करके, सिर पे पैर रख करके गए थे। चेंट एंड भी हैप्पी, इसका तात्पर्य यह है कि भय नहीं रहेगा तुमको, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। जबकि 10,000 बिच्छू डंक मारे इतना कष्ट होता है मरते समय, लेकिन भक्त को कैसे कष्ट होता है? जैसे बलि, जैसे बाली ने शरीर त्याग दिया था। जब बाली ने जब शरीर त्यागा, कैसे त्यागा? जैसे हाथी के गले में एक कच्चे धागे में एक माला पुरो के डाल दिया जाए और पकड़ के तोड़ दिया जाए, एक एक मोती बिखर जाएगा, फैल जाएगा एक एक मोती। माला तो टूटी, लेकिन अगर हाथी से पूछा जाए, भाई साहब कुछ पता लगा क्या तुम्हारे गले की माला टूटी है? नहीं बता पाएगा, क्यों? कच्चा धागा है और हाथी के गले में डला हुआ है। गिरतन जा रही बार उसके पता ही नहीं लगेगा कि कब गिर गई, कब टूट गई। ऐसे ही भक्त लोग, चार बिच्छुओं का जो जैसे माला टूटी, टूटने में भी कष्ट हुआ होगा, टूटने में ताकत भी लगाई होगी, लेकिन हाथी को मालूम नहीं पड़ा। ऐसे इन भक्तों को जो जप करते हैं, चैंट एंड बी हैप्पी, वो इसलिए हैप्पी हैं कि उनको टूटी हुई माला का अर्थात जो शरीर त्यागते हैं, दूसरा शरीर में जाएंगे या भगवान के धाम जाएंगे सीधे, उनको पता ही नहीं लगेगा कि मैंने शरीर कब छोड़ दिया। बिल्कुल भी उनको पीड़ा का एहसास भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमें भगवान में आस्था रखनी चाहिए। क्योंकि टाइम शायद ओवर हो गया, मुझे ज्यादा समय ले गया, आज अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी बैठे हुए हैं, रमाकांत प्रभु, कोई प्रश्न कोई गलती हो तो दास को माफ कर देना, अच्छा ही हो तो उसे ग्रहण कर लेना। श्रीमद्भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की।